ಮರುಜಲಧರವರಣಂ ವಿಕಸಿತ ನಲಿನಾಶಯಂ ವಿಸ್ಫುರನ್ನಂದಹಾಸಯಂ ಕನಕರುಚಿದುಕೂಲಂ ಚಾರುವರ್ಹಾವಶೂಲಂ ತಮಪಿ ನಿಖಿಲ ಸಾರಂ ನೌಮಿ ಗೋಪೀಕುಮಾರಂ. ಭಗವಾನಪಿ ತಾರಾತ್ರೀಃ ಶರದೋತ್ಫುಲ್ಲಮಲ್ಲಿಕಾಃ ವೀಕ್ಷರಂತಂ ಮನಶ್ಚಕ್ರೆ ಯೋಗಮಾಯಾಮುಪಾಶ್ರಯ. ಚಿರಾಶ್ವಂಸಾಧ್ಯಾಯಿ ಕಾ ಪಹಲಾ ಶ್ಲೋಕ ಹೈ. तो योग माया का क्या अभिप्राय है, इसको विभिन्न संतों ने विभिन्न प्रकार से देखा. और भगवान की योग माया है, इसलिए सभी का देखना ठीक है. योग माया के जितने अर्थ हैं वो सभी अर्थ समीचीन हैं और सभी अर्थ यहां पर लागू होते हैं. तो इस भगवान ने अपनी परम मधुर वास लीला में जिस प्रकार अचिंत महाशक्ति उपाय का प्रकट प्राकट्य किया, उसी प्रकार से इसमें अन्य अन्य विशेषताएं और भी हैं. तो थोड़ा सा उसका रस और ले लिया जाए. तो माया दंभे कृपायांच, इस अभिधान के वचनानुसार माया शब्द का अर्थ कृपा भी होता है. तो वेद माया उपाश्रित है, इस वाक्य का इसके अनुसार व्याख्या करें तो योगे आत्मना सह मिलने या माया कृपा तामुपाश्रिता भगवान जंतु मनश्चके. श्री भगवान ने श्री गोपांगनाओं के साथ रमण करने की इच्छा की, तब उन्होंने इस प्रकार की कृपा का को प्रकट किया कि जिससे श्री रूपांगनाओं के अबाध मिलन में कोई बाधा न रहे. तो भगवान के साथ मिलने के लिए कोई साधन यदि है तो भगवान की एकमात्र कृपा ही है. कोई मनुष्य कोई साधक ये चाहे कि भगवान की कृपा को बाद देकर अपनी शक्ति से हम भगवान से मिल लेंगे तो ये संभव नहीं है. कितना ही साधन किया जाए और किसी भी योग का आश्रय लिया जाए, भगवत दर्शन भगवत मिलन बिना भगवान की कृपा के कभी संभव नहीं. ये सच्ची बात है कि भगवान ने अपनी कृपा वितरण में पक्षपात नहीं है. भगवान अपनी कृपा को बांटने में कहीं पक्ष करते हैं सो बात नहीं, परंतु भक्त की आकुल उत्कंठा के बिना, भक्त अत्यंत व्याकुल होकर जब उत्कंठित होता है भगवान से मिलने के लिए, उस समय जैसा कृपा का प्राकट्य होता है वैसा निसंग नहीं होता. कृपा सर्वदा है, सदा है, पर आकुल व्याकुल उत्कंठा में वो कृपा प्रकट होकर जितना कार्य करती है उतना कार्य साधारण दशा में नहीं करती। तो कहते हैं भाई ये भगवान की जितनी भी अन्य लीलाएं हैं उन सभी लीलाओं के पार्षदों में जितने पार्षद आज तक लीला में हुए श्री गोपांगनाओं के साथ भगवान के मिलन में श्री गोपांगनाओं के मन में जिस प्रकार की उत्कट उत्कंठा थी ऐसी कहीं आज तक हुई नहीं। इसीलिए ऐसा मिलन कहीं नहीं हुआ। ये सिद्ध है कि गोपांगनाओं की जिस प्रकार की उत्कट उत्कंठा हुई वैसी उत्कंठा किसी पार्षद में आज तक नहीं हुई। इसीलिए गोपांगनाओं के साथ जिस प्रकार का मिलन भगवान का हुआ ऐसा कहीं नहीं हुआ। कहते हैं कि ऊख है ऊख गन्ना ईक्षुदंड किसी गन्ने में स्वभावतः ही रस परिपूर्ण है। रस नहीं परंतु जितना उसका अधिक पेशन होता है उसी परिमाण में रस निर्गम होता है, रस का प्राकट्य होता है, रस बाहर निकलता है। गन्ने को यदि बहुत कम जोर दिया जाए तो कम रस निकलेगा और बहुत अधिक गन्ने का पेशन किया जाए तो बहुत अधिक रस निकलेगा। तो भगवान की कृपा स्वभावतः परिपूर्ण होते हुए भी भक्त की सेवा की आकांक्षा जिस परिमाण में होगी उसी परिमाण में उस भक्त के सामने भगवान की कृपा का प्रकाश होगा। भक्त की सेवा आकांक्षा, भक्त की भगवान की सेवा करने की आकांक्षा जिसकी जितनी जैसी होगी उसी के अनुसार कृपा का प्रकाश होगा। तो इन ब्रजरमणियों के समान सर्वत्याग करके श्री कृष्ण की सेवा की आकांक्षा त्रिभुवन में आज तक कहीं नहीं हुई। इसीलिए भगवान की भी ऐसी कृपा आज तक कहीं नहीं हुई। और भगवान की कृपा के बिना कोई भी न उन्हें देख सकता है, न उनसे मिल सकता है और न उनकी सेवा ही कर सकता है। भगवान की कृपा से ही देखने का, मिलने का, सेवा करने का अधिकार मिलता है, मनुष्य के साधन से नहीं। तो वो भगवान अवाम मनस गोचर हैं, भगवान को मन नहीं जान सकता, भगवान का बखान वाणी नहीं कर सकते, भगवान इन हाथों से सेज नहीं होते, तथापि अपनी कृपा से वो भक्तों के दृश्य बन जाते हैं, वो भक्तों के वाच्य बन जाते हैं, भक्तों के भाग्य बन जाते हैं और भक्तों के सिर बन जाते हैं। माने भक्त उन्हें देख सकते हैं, भक्त उनका वर्णन कर सकते हैं, भक्त उनके संबंध में विचार कर सकते हैं और भक्त उनकी सेवा कर सकते हैं। ये सब बातें उनमें नहीं होने पर भी भक्त के लिए हो जाती हैं। तो नित्याव्यक्तो भगवान ईक्षते निज शक्तितः तामृते परमात्मानं कपश्येताम चंदुः। भगवान नित्य अव्यक्त है, वो अपनी शक्ति से अपनी कृपा से ही भक्तों के दृश्य होते हैं। उनकी कृपा के बिना इस अपरिच्छिन्न परमात्म तत्व को कोई देख ले उसके ज्ञान गम्य भी हो जाए ये भी संभव नहीं। तो बजरमणियों में श्री कृष्ण के प्रति उपबुद्धि से धारणा हुई तो श्री कृष्ण ने भी ठीक इसी भाव से उनके साथ मिलन और विहार किया। तो श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा के बिना ये लोक वेद विद्विष्ट भाव से इस प्रकार का मिलन कदापि संभव नहीं। तो भगवान की उनकी अपनी बहुत प्रकार की लीलाओं में बहुत प्रकार से भगवान का भक्तों के साथ मिलन हुआ होता है, परंतु रासक्रिया में जिस प्रकार से श्री गोप रमणियों के साथ भगवान का मिलन हुआ, इस भाव से किसी लीला में किसी के साथ नहीं हुआ। तो इस लीला में इस प्रकार की कृपा शक्ति का विकास हुआ था कि श्री गोपांगनाओं को पर मानकर देश बिहार में कोई आपत्ति नहीं। तो कहते हैं कि भगवान की जो कृपा शक्ति है ये तमाम अनंत शक्तियों में श्रेष्ठ है, और कृपा शक्ति जब प्रकट हो जाती है तो भगवान की सारी शक्तियां उस कृपा शक्ति की अनुगामिनी होकर सेवा करने लगती हैं, सब शक्तियां। तो भगवान सर्वेश्वर होने पर भी अपनी इच्छा से स्वयं इस कृपा शक्ति के अधीन है। ये कृपा शक्ति जहां प्रकट होती है वहां नाना प्रकार से भक्तों की मनोवासना भगवान पूर्ण करते हैं। तो ब्रजरमणियों ने अपने इस परत प्रेमवश धैर्य लज्जा कुल शील मान भय आदि लोक परलोक आदि सब का परित्याग करके निर्बाध श्री भगवान की सेवा करने के लिए अत्यंत उत्कंठित होकर माने उत्कंठा की चरम सीमा पर पहुंचकर जब उन्होंने भगवान के समीप जाने की इच्छा की तब भगवान की कृपा शक्ति पूर्ण रूप से विकसित होकर भगवान को भी उनकी प्रेम सेवा ग्रहण के योग्य सजा दिया। और उसी प्रकार से गोपियों के साथ श्री गोपीनाथ का मिलन संगठित हुआ, इसीलिए ये लीला सर्वलीला मुकुटमणि कहलाई। तो इससे योगमाया मुपाश्रित है, इस वाक्य से भगवान की निर्वधि कृपा का ही संकेत मिलता है। तो अब इस कृपा का ही एक रूप और दिखाते हैं बड़ा सुंदर। श्री भगवान की रासलीला में गोपियों के साथ उनका योग करने के लिए, गोपियों का योग भगवान के साथ हो जाए इसलिए जिस प्रकार अपार कृपा प्रकट हुई, ठीक इसी प्रकार गोपियों का पति पुत्र पिता भ्राता आत्मीय बांधव गृह परिवार स्वजन पदार्थ इत्यादि से अयोग करने के लिए भी ये कृपा प्रकट हुई। भगवान ब्रह्म रूप से सर्वत्र और अंतर्यामी रूप से समस्त जीवों के हृदय में अवस्थित हैं, अतएव सब के साथ सदा ही उनका योग है, इसमें को संदेह नहीं। किंतु स्त्री पुत्र स्वामी परिजन विषय वैभव देह घर इत्यादि के साथ अयोग में रहने के कारण इस नित्य योग का अनुभव नहीं होता। बात समझ में आई कि नहीं? मैंने भगवान तो सभी के हृदय में नित्य रहते हैं, तो इसलिए भगवान का किसी के साथ कभी वियोग है ही नहीं, योग है ही। पर ये योग दिखता क्यों नहीं? इसलिए नहीं दिखता कि घर में, घर वालों में, परिवार में, संसार में, भोगों में, प्राणी पदार्थों में योग हो रहा है, वहां अयोग नहीं है। वहां अयोग हो तो यहां योग हो। तो यहां कृपा शक्ति ने दोनों काम किए। गोपियों का पति पुत्र आदि से अयोग किया और भगवान से योग किया। तो ये योग माया, अयोग माया दोनों प्रकार से। तो कहते हैं कि जगत में जो साधक भक्त श्रवण कीर्तनादि ध्यान आदि के द्वारा भक्ति के अनुष्ठान से भगवान का निर्वधि ध्यान करके दैहिक, सांसारिक, वैषयिक कर्म से विरत होते हैं, परंतु निविष्ट भाव से सर्वदा ध्यान में नहीं लगे रह सकते। क्यों रह सकते कि वो दो घड़ी के लिए तो भगवान की ओर जाते हैं, परंतु घर में ही उनका योग बना रहने के कारण से पुनः विषय सागर में कूद पड़ते हैं। उधर गए और यहां का योग छूटा नहीं, संसार का संयोग छूटा नहीं, और भगवान में योग करने गए तो घड़ी आज गई तो भगवान में जाकर के लगने की चेष्टा की, योग किया, परंतु ये 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 अयोग हुआ नहीं था, इसलिए फिर विषय सागर में कूद पड़े। तो इस अयोग के बिना काम नहीं होता। अगर उन ध्याननिष्ठ साधन निष्ठ लोगों का स्त्री पुत्र वित्त आदि में सर्वथा अयोग हो गया होता तो साधन काल में भगवान का योग नित्य बन गया तो उसमें बाधा आती नहीं। ये घर का, संसार का योग ही बार बार वहां से खींचकर भगवान से, और ये भगवान का वियोग कराता है और इसमें लगाता है। तो इसलिए देह देहकारी, देह और देह के संबंधी विषय, इन सब से अयोग हुए बिना भगवान की योग स्फूर्ति ठीक ठीक सिद्ध नहीं होती। माने इनसे वियोग हुए बिना भगवान से संयोग सिद्ध नहीं होता, और होता भी है तो स्थायी नहीं होता। बोले औरों की बात तो छोड़ दें, ध्रुव प्रहलाद जिनके समान भगवान के भक्त कौन होंगे, भक्त शिरोमणि, पर इनकी जीवनी पर विचार करके देखिए, साक्षात भगवान के लीला विग्रह का योग सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ, किंतु संपूर्ण रूप से विषयों से अयोग न होने के कारण वे फिर भी राज्य कार्य में रत हो गए। ध्रुव तो लड़ाई करने गए, प्रह्लाद ने भी लड़ाई की, उसके बाद कई बार नर नारायण से लड़ाई हो गई प्रह्लाद की, बड़ा भयानक युद्ध हुआ। तो जगत में अयोग न रहने के कारण इन भक्तों की भी जीवनी, यद्यपि उनकी निष्ठा में अंतर नहीं मानना चाहिए, पर उनके जीवन के बाह्य कार्यों में जगत आ ही गया, और वो जो भगवान का संपूर्ण भाव से योग था वो देखने में नहीं रहा उस समय। तो इसलिए भगवान के सहित योग जैसे भगवान के की कृपा से साध्य है, उसी प्रकार संसार के विषयों से अयोग भी उनकी कृपा से ही साध्य है। कोई कहे कि संसार के भोगों को हम पुरुषार्थ करके छोड़ दें तो इतनी आसक्ति हमारा छूटेगा नहीं, भगवान की कृपा ही इस योग को छुड़ावेगी और भगवान की कृपा इस योग में लगावेगी। तो रासलीला में श्री भगवान का जो योग, ये ऐसा हुआ कि भगवान के सिवा अन्यान्य समस्त प्राणी पदार्थ परिस्थिति में अयोग सिद्ध करने वाला हो गया। तो ऐसी इस प्रकार की योग माया और अयोग माया, योग कराने वाली कृपा और अयोग कराने वाली कृपा, इन दोनों कृपाओं का प्रकाश करके भगवान ने दीक्ष रंतु मनश्चक्रे रमण की इच्छा की, इसकी कृपा प्रकाश करके। अतएव ये रासलीला, इस रासलीला में भगवान योग माया मुताश्रित है और अयोग माया मुताश्रित भी है। तो भगवान की अयोग माया का ऐसा प्रभाव है, अयोग कृपा अयोग माया का प्रभाव दिखाते हैं, ऐसा प्रभाव है कि एक बार भगवान ही आगे आवेगा। जब भगवान ने गोपियों के प्रेम की परीक्षा करने के लिए अथवा उनके प्रेम का महत्व जगत में प्रकट करने के लिए जब उनसे कहा अपने अपने घर लौट जाओ, पति पुत्र आदि की सेवा करो, तो उनका अयोग कितना हो चुका था। वो बोली, यत्पत्य पत्य सुरदा मनोवृत्ति रंग स्त्री राम स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तम स्त्री वमित दुपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवा तनुभृतां किल बंधुरात्मा। गोपिया बोली, श्याम सुंदर आप परम धार्मिक हैं, धर्म के आधार हैं, इसीलिए आप हमें उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम पति पुत्र आत्मियों की सेवा में लगो, स्त्रियों का परम धर्म है, बहुत ठीक। तो महाराज हम तो कहते हैं कि ये उपदेश आपका आप ही में रहे, हमारे तो आप ही परम प्रेष्ठ हैं, परम बांधव हैं और सर्वस्व हैं। तो यहां गोपियों के कहने का तात्पर्य है कि हे श्री कृष्ण, तुम हमारे लिए करोड़ों करोड़ों प्राणों की अपेक्षा भी प्रियतम हो, तुम्हारी सेवा के बिना हमारी और कोई भी स्थिति हो नहीं सकती। तुम्हारी सेवा को छोड़कर क्षण मात्र के लिए भी हम दूसरा काम करें, इस प्रकार की हमें शक्ति है ही नहीं। तो इससे स्पष्ट जाना सिद्ध होता है कि सब जगह से गोपियों का अयोग हो गया था। अगर अयोग न होता इतनी बात कहने की हिम्मत होती ही नहीं, जैसे विप्र पत्नियों में नहीं हुई। तो श्री कृष्ण प्रेमवती गोपरमणियों के साथ रासलीला में जब प्रवृत्त हुए तो कितनी प्रकार से उन्होंने अपनी कृपा को प्रकट किया, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो यह भी देखा योग माया और अयोग माया के वर्णन से। तो इसके अतिरिक्त अयोग माया मुताश्रित है, इसकी व्याख्या और भी होती है। अयह मैंने अयोगत गच्छती थी अयोगा। तो इस प्रकार से व्याख्या करने पर मालूम होता है, अयह माने लोह, लोह के समान जिसकी गति है उसको कहते हैं अयोगा। अयोगत गच्छती थी, लोह के समान जिसकी चाल है, लोहे के समान, उसको कहते हैं अयोगा। तो भगवान की ये माया, ये जो कृपा, ये अयोगा है। तो अयोगा का अर्थ क्या हुआ कि जैसे लोहा चुंबक को देखते ही स्वाभाविक उसकी ओर दौड़ता है, लोहा दौड़ पड़ता है, इसी प्रकार प्रेमी भक्तों को देखकर भगवान की कृपा उनकी ओर दौड़ पड़ती है। खींचने के लिए। तो कहते हैं कि लोह जिस प्रकार से वो अयस्कांत मणि चुंबक है कि वो स्वभावत ही दौड़ता है, लोह को दौड़ाना पड़ता नहीं, चुंबक सामने आ गया तो लोहा दौड़ गया, स्वभावत है। इसी प्रकार से भगवान की कृपा भी प्रेमी भक्तों के सामने दौड़ती है। तो मानो प्रेमी भक्त, मानो भगवान की कृपा तो लोहा है और भक्तों का प्रेम चुंबक है। तो जैसे चुंबक को लोहे का आवाहन नहीं करना पड़ता, चुंबक कहता नहीं लोहे को कि तुम हमारी तरफ आओ, चुंबक खाली सामने हो जाते लोहे के। तो इसी प्रकार से भगवान की कृपा भी स्वतः प्रवृत्त होकर अपने आप से चलकर प्रेमी भक्त की ओर दौड़ती है। लेकिन एक बात है, ये हम लोह चुंबक के दृष्टांत में देखते हैं उदाहरण में, कि यदि लोहा परिमाण में बहुत ज्यादा हो, हजारों मन लोहा हो और चुंबक कोई तोला तोला सा ही हो, तो वो चुंबक खींचने वाला हो होने पर भी इतने लोहे को नहीं खींच सकता। तो इसी प्रकार से भगवान की कृपा का परिमाण भी इतना ज्यादा है, ये लोहा इतना भारी है, भगवान की कृपा रूपी लोहा इतना अधिक है, कृपा की शोभा जो है ये अनंतता नहीं है, भगवान कृपा इतनी सी नहीं। भगवान में रमण करने की इच्छा की, भगवान अपरंत मनुष्य करे। तो यहाँ ये प्रश्न होता है कि अनंत रूपधारी भगवान ने किस रूप में रमण करने की इच्छा की। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि यह अगमायाम उपाश्रित है।